हम लोग पंडित दौलत राम जी के छह ढाला की तीसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें सात तत्वों का स्वरूप पंडित साहब व्यवहार मोक्ष मार्ग बताने के लिए कर रहे हैं। उसमें से अभी तक हमने दो तत्वों का स्वरूप पढ़ लिया है, जीव तत्व का, और अजीव तत्व में उन्होंने उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसकी चर्चा सातवें छंद तक कर ली है। आठवें में भी, छंद नंबर आठ में आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी चर्चा की थी। तो उसकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ी चर्चा कर ली थी। सकल द्रव्य को वास चास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निसदिन सो व्यवहार काल परिमानो। और हमने इसमें देखा था कि आकाश कितना बड़ा है, इतना बड़ा होने पर भी वो आकाश हमारी ज्ञान की पर्याय में पूरा समा जाता है। हमारा ज्ञान कितना बड़ा है, हमने वाली बात उसमें समझी थी। काल द्रव्य, नियत वर्तना निस्दिन सुव्यवहार काल परिमाणु। तो इसमें एक तो शुद्ध काल द्रव्य है जो कालाणु है, वो निश्चय काल है जो प्रति समय बदलता है, एंड फिर उसके डिविजन, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। तो ये सारे जो डिविजन्स हैं, ये व्यवहार काल है। वाई सो? क्योंकि इनकी रेलेवेंस इज लाइक यू नो दे आर ट्रू ओनली फॉर स्पेसिफिक पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक ज्योग्राफी। लाइक इफ आई से कि व्हाट टाइम इज राइट नाउ, इट्स 6 hours 15 minutes ऑफ द मॉर्निंग, 6:15 AM। सो इट इज ट्रू फ्रॉम माई ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, माई परस्पेक्टिव, वेयर आई एम सिटिंग, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर यू। व्हाट टाइम इज एट दैट पॉइंट? आप लोगों के पास क्या टाइम हो रहा है अभी?
अभी 8:09,
राइट? सो
8:44
वॉट इज ट्रू? कौन सा सही है, 6:15 बज रहे हैं कि 8:45 बज रहे हैं? 8:45 बज रहे।
अपेक्षित अपेक्षित हो गया ना आपकी, आपके वहाँ से आपके।
करेक्ट। तो इसलिए ये काल द्रव्य कोई सच्चा नहीं है, हम ये जो बोल रहे हैं हम सिर्फ अपनी व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं। दैट्स वाई इस काल को कहते हैं व्यवहार काल, झूठा काल। दिस इज ओनली ट्रू अप टू अ सर्टेन ज्योग्राफी, राइट? यदि आप भरत क्षेत्र के बाहर निकलोगे तो आपको शायद विजय क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते कोई काल ही नहीं दिखे। वहां पर कोई पांचवा काल, पहला दूसरा काल कुछ है ही नहीं, चौथा काल ही चल रहा है। दैट टू इज नॉट चौथा काल इज कॉल्ड, इट्स जस्ट अ काल, देयर इज अ कांस्टेंट काल गोइंग ऑन। तो ये छह काल की व्यवस्था इज वेरी रेलेवेंट टू अवर ज्योग्राफी। हम भरत क्षेत्र में है या हम ऐरावत क्षेत्र में होते, तो यहाँ पर ये वाली व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन ये सब सिर्फ रेलेवेंट टू दिस। देवगति के देवों को नहीं होता चौथा काल चल रहा है कि पांचवा काल चल रहा है, इट डजंट मैटर टू देम। नरक गति में देयर इज नो चौथा पांचवा काल गोइंग ऑन। दिस ऑलवेज इन डिफरेंट ज्योग्राफी द काल इज ऑलवेज डिफरेंट बहुत, क्योंकि हमारी लाइक इंडिया से यूएस जाने में ही टाइम जोन बदल जाती है, तो फिर यहाँ से स्वर्ग जाने में तो कितना कुछ बदल जाता होगा। एंड द ज्योग्राफी इज टू वास्ट, वी डू नॉट नो। तो ये सब क्या है, हम लोग अपने समझने के लिए काल में पार्टीशन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं व्यवहार काल।
तो स्वर्ग में, स्वर्ग में हमारे यहाँ दिन रात होते हैं व्यवहार काल। वैसे तो आपने बोला कि इट्स इररिलेवेंट, वहाँ हमारे हमारे जो दिन और डे नाइट होते हैं, तो वहाँ वर्ग में वगैरह वो भी ऐसी
बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां पर चलती हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ दिन और रात हो रहा हो तो वहां पर हो रहा हो ऐसा नहीं है। और वहां पर ऐसा अंधेरा नहीं हो जाता रात में, वहां तो देवों के विमान है, तो वो तो एकदम ज्योति के ही है। लाइक जैसे तो उसमें रत्नों की ज्योति तो हमेशा ही है। और लाइक जब भोग भूमि से कर्म भूमि कन्वर्ट होने लगे थे, तो धीरे धीरे पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में दिक्कत ये हुई कि कल्प वृक्ष होते थे, वो होते थे स्ट्रीट लाइट लैम्प्स, आप ऐसे समझ लो। तो कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना था कि सूरज चांद दिखते नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये कल्प वृक्ष वगैरह सब धीरे धीरे जैसे जैसे काल बदलता गया तो ये सारे जाने लगे, तो इनका प्रकाश मध्यम होने लगा। तो इसके कारण धीरे धीरे एक लोगों को एकदम गोला दिन में दिखाई देने लगा आकाश में, और एक रात में दिखाई देने लगा। तो लोगों को डर लगने लगा कि क्या हो रहा है ये। तो स्टार्टिंग में लोग सूरज और चंद्रमा से बहुत डर गए थे कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो हमारे जो पहले दूसरे कुलकर थे, दे एक्सप्लेन्ड कि भैया नहीं, डोंट वरी, इट्स अ ज्योतिष विमान, ये हमारी व्यवस्था के लिए, दिन में सूरज आता है रात को। तो यू नो यूएस वगैरह की जो कल्चर है पुराना, जो उनका आदिवासी कल्चर वगैरह होता है यूएस वगैरह में, उसकी जो मूवीज बनी है, तो दे यू नो दे जो मूवीज है ये सब केज पीपल में, दे शो दैट दे वर अफ्रेड ऑफ द सन, राइट? इन मोस्ट ऑफ द मूवीज दे शो पुरानी वाली, दे वर अफ्रेड ऑफ द सन, दे वर अफ्रेड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड, वो उसको क्या बोलते हैं, सन का क्या होता है जब सन के ऊपर कोई दूसरा प्लेनेट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ वो, अरे जो,
क्या ग्रह
हाँ ग्रह ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को क्या
ग्रहण
बोलते,
ग्रहण
हाँ हाँ
सूर्य
सूर्य सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो दैट हैपेंस। सो पीपल यू नो इन ओल्ड टाइम्स दे सॉरी व्हाट,
इक्लिप्स इक्लिप्स
या इक्लिप्स इक्लिप्स इक्लिप्स, करेक्ट 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 करेक्ट। सो इन अर्लियर टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव एनी नॉलेज, एंड इन द लाइक, बट इंडिया वॉज वेरी मच डेवलप्ड सिंस द ओल्ड टाइम, सो इंडिया डिड नॉट हैव दीज प्रॉब्लम्स। इंडिया हैड दीज प्रॉब्लम्स कब, जब चौथा काल शुरू होने वाला था तब, राइट? बट यूएस वगैरह में दे डेवलप्ड वेरी लेट, लाइक कभी इन लोग के सिविलाइजेशन कब डेवलप हुए हैं अभी,
मगर
लाइक
इंडिया इंडिया में भी तो इक्लिप्स की वगैरह वो सुपरस्टिशंस तो सारे होते
सुपरस्टिशंस तो थे बट सूरज चंद्रमा से डरना और ये सब एवोल्यूशन में धीरे धीरे आया, राइट? स्टार्टिंग में एवरीबडी वॉज अफ्रेड, वाई? बिकॉज पहले सब लोगों को इसकी आदत नहीं थी और अचानक से प्रकट हुए, मतलब प्रकाश, ऐसी देवगति में भी प्रकाश होता है तो वहां दिन रात का कोई सिस्टम नहीं होता,
बराबर
बट वहां पर ही रेस्ट वगैरह करने का और ये सारे सिस्टम्स चलते हैं, ठीक है? तो जो भी काल द्रव्य ये सब व्यवहार है, इट्स अ झूठ, मतलब इट्स ओनली ट्रूथ फॉर अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, इट्स ओनली रेलेवेंट टू द प्लेस यू आर लिविंग इन, बाकी दूसरी जगह पर जाके सब झूठ हो जाता है। इफ आई एम कमिंग डाउन टू यूएस और इफ आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव टू शिफ्ट माई वॉचेस तुरंत वहां पहुंच के, बिकॉज माई वॉच वॉट एवर विल बी टेलिंग देयर नाउ वुड बी अ लाई, so I'll have to adjust it to their time style, right? So it's all lie. जो हम लिख रहे थे वो जो इंडिया में true true है वो ऑस्ट्रेलिया में lie हो जाता है, वो US में, कैनेडा में, ब्रिटेन में, हर जगह जाके बदल जाएगा। तो इसलिए इट इज कॉल्ड व्यवहार। व्यवहार यानी कि वो अपने क्षेत्र की अपेक्षा तो सही है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाके वही झूठ बन जाता है, ठीक है? निश्चय काल के साथ एक सही चीज है, निश्चय काल इज द अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट द नोमेनक्लेचर ऑफ द टाइम। सी व्यवहार काल में वी आर डिवाइडिंग द लेबलिंग द टाइम, वी आर सेइंग इट्स 9 AM नाउ, वी आर सेइंग दैट इट्स द मंथ ऑफ दिसंबर नाउ, सो नाउ वी हैव गिवन नोमेनक्लेचर टू दिस, वी हैव लेबल्ड इट, करेक्ट? That's why these names are bound to be, you know, like 9 बजे, कैसे 9 बजे, अभी तो यहाँ पर 6 बजे हैं, right? So these names are bound to change, but you cannot change the quantity of it, मतलब जो उसकी ड्यूरेशन है। तो निश्चय काल जो है वो ड्यूरेशन पर ध्यान देता है, वो बोलता है एक समय इतना होता है, मतलब इतना होता है। अब वो स्वर्ग का एक समय हो या इंडिया का हो या यूएस का हो, वन समय वुड बी ओनली दिस लॉन्ग, दैट्स इट। अब वो 9 बजे के बाद होने वाला समय हो या 6 बजे के बाद होने वाला समय हो, तो निश्चय काल इज यू नो ड्यूरेशन बेसिस, नॉट द नेम नोमेनक्लेचर के दिसंबर है कि मंडे है कि ट्यूसडे है कि सुबह है कि रात है, नॉट दिस, इट्स लाइक कितना टाइम गया। तो अब हमारी जो आयु मानी जाएगी, मेरी आयु है लेट्स से 80 ईयर्स, तो देवगति में 10,000 ईयर्स, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मेरे 80 ईयर्स और देवगति के 80 ईयर्स में, देवगति के 80 ईयर्स लंबे होते हैं, मनुष्य गति के 80 ईयर्स शॉर्ट होते हैं। 80 ईयर्स इज सेम इन मनुष्य गति, सेम इन देवगति, इन सेम इन नरक गति। सो दिस ड्यूरेशन इज निश्चय, जो समय है वो निश्चय काल है, जो द्रव्य है काल द्रव्य मूल द्रव्य, इसमें कुछ झूठ नहीं होता। देवों की आयु होगी तो वो जितनी ड्यूरेशन है वो यदि यहाँ पर होगी तो यहाँ पर भी वही ड्यूरेशन कैलकुलेट होगी। तो व्यवहार में क्या चेंज होता है? व्यवहार में हमारे नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है कि अभी मॉर्निंग है कि इवनिंग है, कि दिसंबर है कि जनवरी है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ये सब। ठीक है, एनी क्वेश्चन इसमें से? काल द्रव्य में से काल द्रव्य को अस्थिकाय नहीं कहते हैं, पांच अस्थिकाय होते हैं, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पांच द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। एंड काल द्रव्य इज नॉट काउंटेड इन अस्थिकाय, वाई?
एक प्रदेश है
एक प्रदेशी, तो वाई कैन नॉट बी अस्थिकाय। अस्थिकाय मीनिंग इज काय, काय इज बहुप्रदेशी, काय मीन्स बॉडी, बॉडी विल हैव पार्ट, पार्ट यानी कि बहुत सारे प्रदेश। सो द काल द्रव्य इज ओनली 1.1 टाइनी पॉइंट, एंड लाइक दिस देर आर अनकाउंटेबल टाइनी पॉइंट स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड। वो निश्चय काल द्रव्य है, कालाणु है, करेक्ट? वी ऑल्सो डिस्कस इन द लास्ट क्लास के कालाणु असंख्यात क्यों है, एक क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि परिणमन की व्यवस्था थी। वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट इन द लास्ट क्लास,
थोड़ा
राइट?
थोड़ा सा रिपीट कर दो क्योंकि खास कोई थे नहीं ना लास्ट टाइम, मानस
अच्छा
भी नहीं था, सुधा बेन है वो भी नहीं थे, आई थिंक मेयर सचिन भाई दोनों ही थे, रुजुल
ओके ओके। तो इट वॉज अ क्वेश्चन, रिजल समीर आप लोग हो? रिजुल समीर, मानस यू आर देयर, राइट?
हाँ जी
ओके, सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास कि धर्म द्रव्य, हाउ मेनी धर्म द्रव्य आर देयर मानस?
पूछा धर्म
धर्म द्रव्य
द्रव्य
कितने
कितना
हैं?
होता है? धर्म द्रव्य, अच्छा
मानस धर्म द्रव्य कितने हैं इन क्वांटिटी?
एक
एक। अधर्म द्रव्य कितने हैं? काल
एक
द्रव्य कितने हैं?
असंख्यात।
सो द क्वेश्चन वॉज, जब धर्म द्रव्य एक है विच इज द मीडियम ऑफ मोशन, अधर्म द्रव्य एक है मीडियम ऑफ रेस्ट, एंड दे आर स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। धर्म द्रव्य पूरे दुनिया में फैला हुआ है, अधर्म द्रव्य भी, इट्स अ मीडियम, करेक्ट?
हाँ जी
हाँ। सो फिर काल द्रव्य भी एक ही रखना था ना, काल द्रव्य को असंख्यात क्यों किया? ये भी एक होता और पूरी दुनिया में फैल जाता धर्म अधर्म द्रव्य जैसा। वाई देर इज अ सेपरेट नंबर फॉर काल द्रव्य एंड वाई देर इज अ कॉमन नंबर फॉर धर्म एंड अधर्म द्रव्य? अंडरस्टूड
ना
क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। तो जब धर्म द्रव्य भी पूरे लोक में फैला हुआ है और काल द्रव्य भी पूरे लोक में फैला हुआ है, मतलब लेकिन काल द्रव्य का एक एक अणु एक एक प्रदेश में फैला हुआ है, तो इतने सारे काल द्रव्य की जगह एक बन सकता था ना, पूरी दुनिया में एक को ही डाल देते। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, सबको?
हाँ जी
हाँ। सो इसका जो सोल्यूशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको खोजने की थोड़ी कोशिश करी थी, वो इसलिए था, ये वाली व्यवस्था इसलिए क्योंकि एकदम परफेक्ट मोस्ट साइंटिफिक सेटिंग वी आर लिविंग इन, इट्स लाइक द मोस्ट साइंटिफिक व्यवस्था जो हमारे पास है। तो जब हम गमन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से मंदिर तक जाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लीव बिहाइंड माई हैंड एंड लाइक यू नो, हाथ का काम नहीं पड़ेगा आज मंदिर में, सो आई गो, आई नॉट, वाई वाई टू कैरी माई हैंड, तो मैं हाथ नहीं लेके जाऊंगा मंदिर में। कैन आई डू दिस, कैन दिस वर्क?
नो इट कांट वर्क
यू कैन नॉट लीव योर बॉडी पार्ट बिहाइंड, सो यू कैन नॉट लीव योर बॉडी पार्ट मीन्स यू कैन नॉट ऑल्सो लीव योर प्रदेश बिहाइंड राइट. आत्मा अपने प्रदेश नहीं छोड़ सकता पीछे. सो वेन एवर वन सब्सटेंस वुड बी ट्रेवलिंग इट वुड बी ट्रेवलिंग विथ ऑल इट्स प्रदेश. उसके जितना भी पूरा सब्सटेंस है जितना भी बड़ा हो वेल इट वुड बी ट्रेवलिंग विथ ऑल ऑफ इट्स प्रदेश. यस और नो? करेक्ट मानस ठीक है.
हाँ जी.
तो यदि ऐसा होगा कि हम धर्म द्रव्य के भी असंख्यात टुकड़े कर दें और उसको भी काल द्रव्य जैसा पूरे लोक में बिछा दें तो मेरे ट्रेवल करने में मंदिर तक जाने में एक धर्म द्रव्य अभी निमित्त नहीं हो रहा है. अब बहुत सारे धर्म द्रव्य निमित्त हो रहे हैं. तो मेरे प्रदेश असंख्यात है और अब धर्म द्रव्य भी असंख्यात है और इंडिविजुअल प्रदेश को इंडिविजुअल धर्म द्रव्य इज निमित्त राइट इन ट्रेवलिंग. सो वॉट इफ आधे प्रदेश को धर्म द्रव्य अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है आधे प्रदेशों को अलग लाइक प्रदेश वे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना अपनी मनमर्जी के मालिक हो जाएंगे. वॉट विल हैपन हाफ ऑफ माई बॉडी विल से नो आई हैव टू स्टे एट होम हाफ ऑफ इट वुड से नो वी विल हैव टू गो टू टेम्पल. सो इट विल नॉट बी पॉसिबल. द मीडियम शुड बी वन सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन. द्रव्य विल ट्रेवल एज अ होल उसमें उनके प्रदेश ऐसे काम द्रव्य क्वांटिटी में ट्रेवल करते हैं. आप एक द्रव्य आप पूरा ट्रेवल करोगे आप ब्रेक होके ट्रेवल नहीं कर सकते कि मैं आधा पार्ट अभी ले जाता हूँ अपना आधा पार्ट नहीं रह जाएगा. इट इज नॉट फीजिबल इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है. इस कारण सारे प्रदेशों को कोई एक मीडियम चाहिए था जिससे उनका डिविजन नहीं हो. इसके लिए धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक है सो दैट ओनली वन सिंगल द्रव्य विदाउट ब्रेकिंग इटसेल्फ कैन ट्रेवल स्मूथली अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है. लेकिन काल द्रव्य में प्रॉब्लम आई. नाउ काल द्रव्य में क्या हुआ जो परिणमन होता है गमन तो द्रव्य की अपेक्षा होता है कि पूरा का पूरा द्रव्य करता है बट परिणमन सारे के सारे प्रदेश करते हैं दैट इज ट्रू. सारे के सारे गुणों में परिणमन होता है दैट इज ट्रू. लेकिन परिणमन में सिमिलैरिटी हो दिस इज नॉट अ कंडीशन राइट. तो इफ यू हैव हेयर ओवर योर हेड तो सारे के सारे बाल हैं वो आपके हैं ठीक है इट्स योर बॉडी इज हेयर राइट. बट सारे के सारे एक साथ वाइट होंगे दैट्स नॉट अ कंडीशन. एंड इवन वन सिंगल हेयर यू टेक इवन दैट सिंगल हेयर विल यू नो टर्न वाइट एट वन गो नो इट विल स्लोली नीचे से वाइट होगा या ऊपर से वाइट होगा करेक्ट. तो एक पूरा द्रव्य उस पर एक काल द्रव्य यदि पूरा का पूरा एक काल द्रव्य होता तो सारे द्रव्य का मतलब एक सिंगल द्रव्य का सारा परिणमन एक सा होना चाहिए था. मतलब आत्मा के पास प्रदेश है तो जैसे हमारी आंखें यहाँ पर लगी हुई हैं हमारे फेस पर तो आंखों में चक्षु इंद्रिय है तो चक्षु इंद्रिय के कारण जब आप आंखें खोलते हो और आंखों से देखना स्टार्ट करते हो तो यहाँ चक्षु इंद्रिय साइड वर्गणाओं का और आत्मा के प्रदेशों का घूमना ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर रोटेशन इज हैपनिंग मोर बिकॉज दीज प्रदेश आर वर्किंग. तो यदि काल द्रव्य एक होता तो पूरे के पूरे आत्मा को बनना पड़ता. आत्मा में प्रदेश स्पेसिफिक वर्णन वो नहीं होता. तो जैसे कि यू आर स्पीकिंग तो जब आप बोलते हो तब आपके यहाँ के प्रदेशों में ज्यादा कंपन है आत्मा के. क्यों है यहाँ के प्रदेशों में ज्यादा कंपन क्योंकि यहाँ के काल द्रव्य अलग हैं. तो पैर के प्रदेशों में कंपन क्यों नहीं है व्हाइल आई एम सिटिंग क्योंकि वहां का काल द्रव्य अलग है इंडिविजुअल. तो यहाँ पर काल द्रव्य अलग है एंड दैट्स व्हाई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परिणमन हो पाता है. अंडरस्टूड. यदि एक ही काल द्रव्य होता तो अलग अलग परिणमन की पॉसिबिलिटी नहीं होती. हाँ जी
अनुभव जी आप इंग्लिश में रिपीट करोगे क्योंकि मेरी डॉटर भी आज बैठी है तो शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड.
ओके सो इट्स लाइक यू नो द क्वेश्चन वॉज दैट वाई वी डू नॉट हैव सिंगल काल द्रव्य जस्ट लाइक वी हैव सिंगल धर्म द्रव्य एंड अधर्म द्रव्य स्प्रेड ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स ठीक है. सो द सोल्यूशन टू दिस इज वेन वी ट्रेवल एज अ होल यू कैन नॉट लीव पार्ट ऑफ योर बॉडी बिहाइंड. लाइक आई डू नॉट आई विल नॉट नीड माई ब्रेन बिकॉज दिस इज नो एग्जाम आई लीव माई ब्रेन बिहाइंड. it doesn't work like that. If you have to travel, you'll travel as a whole one dravya. That's why there should be one medium of motion. If there would be two different medium of motion in different geographies, then you will, there would be a condition, there would be a situation when your body will have to break into two, because one is being influenced by another. It's like, you know, one person is stretching you from other end and another person is stretching you from the opposite end, and they both are stretching you. So that would be a very different task for us. So since this is not a feasibility and that is not natural, it does not happen, it gives us inclination, it gives us the hint that there is only one dharmadravya. Dharmadravya is only one. There is only one medium of motion, and that will facilitate me wherever we are going. It will, I'll get the facility of dharmadravya to move as a whole substance. But when it comes to kaldravya, the time cannot be one. Why? Because I have this whole body, so I have a 6 feet long body, right? And this body will not modify uniformly. What will happen? Let's say I have developed a bruise on my leg because I fell down. So my leg has a bruise, on my knee I have a bruise, but on my face there is no bruise. Right? So my legs have modified and they have bruise. In the face there is no bruise. So there is no uniformity in my changing, my modifying. If I'm modifying on my own, there is no uniformity. Aise hi, we have a soul. The soul is also huge. So that soul also have at different parts of it, different kind of modification. So since these are not uniform, it tells us that there is no one kaldravya. There are uncountable kaldravya spread over this world, one on each pradesh. Otherwise, yadi kaldravya ek hota, if there was only one kaldravya, there would have been very bad situation. Your body, let's say if I get cancer on my body, I'll not get it in some part, I'll get it in whole body, because there is one kaldravya. There is only one nimitta, so it will be influenced all over. If I am getting karmic bondage, I am not getting karmic bondage at particular part. I'll be getting it totally in complete pradesh of mine. So I am speaking right now bad words, or I am speaking right now and I am seeing and I am smelling, I am hearing. So at present what is happening, I am influencing the pradesh, atma ke pradesh of these parts. So the karmic bondage is intense in these parts only. But if kaldravya becomes one, then there would be a problem. Understood? In kaldravya, each pradesh is a separate entity and it modifies on its own. That's how we have different things happening in different parts of our body. But in dharmadravya, when you have to move, you have to don't move as like your one pradesh is going in this direction, other pradesh is going in that direction. No. You'll have to move as the whole dravya.
So it means karmic, so jo hamari karmic bondage hai, karma sharir ke, wo, that is not even in the whole jo atma pradesh mein?
Yes, ye hota hai, atma ki pradesh, they are on constant rotation, wo hamesha ghoomte rehte hain jab tak yoga ho raha hai. Theek hai? But the more you use yoga, the more you do yoga, the more faster the rotation is. So let's say I'm dancing. मैं डांस कर रहा हूँ तो मेरा काय योग इज इन फंक्शन एंड इट्स इन लाइक यू नो एक्सट्रीम फंक्शन. तो जो आश्रव होगा कार्मिक वर्गणाओं का वो बहुत इंटेंस हो जाएगा. इट विल बी टू फास्ट टू डेंस. मैं शांत बैठ गया निश्चल मुनिराज जैसे, तो अब काय योग से कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरे प्रदेशों का हलन चलन भी सिर्फ उतना है जितना आई एम ब्रीदिंग. सो आई एम ब्रीदिंग, तो पूरा शरीर थोड़ा हिल रहा है. Right? Mm-hmm. जितना हिल रहा है उतना mild rotation is happening. Now if I am not speaking anything, तो मेरा वचन योग नहीं चल रहा है. तो सिर्फ उतना जितना मेरी सांसों की आवाज आती है. Right? So, जितना चल रहा है सिर्फ उतना वहां पर हो रहा है. But the moment I start screaming, तो यहाँ की आत्मा के प्रदेश रोटेट होने लगते हैं. मैं आंखों से देख रहा हूँ, या मैं मन से सोच रहा हूँ, तो द्रव्य मन पर आपके रोटेशन वहां बहुत इंटेंस होता है जब आप सोचते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड,
सॉरी,
हेलो,
जो जगह वहां ज्यादा रोटेशन फास्टर हो जाता है,
यस यस यस, आप जिस, इट्स लॉजिकल, आप जिस पार्ट को यूज कर रहे हो उस पार्ट में बॉडी में ज्यादा रोटेशन हो रहा है, करेक्ट? आप हाथ अकेली चला रहे हो, डूइंग ओनली हैंड एक्सरसाइज, और जहां पर बॉडी है वहीं पर आत्मा के प्रदेश है, तो वहां पर आत्मा के प्रदेशों में भी ज्यादा रोटेशन होगा, इसलिए वहां पर कर्म भी ज्यादा आएंगे, इट्स ऑल मैग्नेट, ठीक है? तो जहां रोटेशन ज्यादा होगा मैग्नेट में, वहां पर ज्यादा कर्म अट्रैक्ट होंगे। तो आत्मा में हमेशा एक सी क्वांटिटी में हर जगह कर्म नहीं आते हैं, जिधर पर ज्यादा काम हो रहा है वहां पर ज्यादा कर्म, जहां पर कम हो रहा है वहां कम कर्म, ऐसे पूरे में आ रहे हैं।
लेकिन हम तब तो हमारा माइंड भी चलता है ना, हाथ पैर भी चलते हैं, माइंड भी चलता है,
किस चीज में
कुछ भी करो,
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब चलता है, करेक्ट, हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अकेली आप अकेली जब सोच रहे हो तब आपकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, कान काम नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज, तो सब जगह कर्म तो आ रहे हैं, बट किसी जगह कुछ ज्यादा वर्क हो रहा है तो वहां पर ज्यादा आ रहे हैं, जहाँ कम वर्क हो रहा है वहां कम आ रहे हैं। तो आई एम डांसिंग बट आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग बट आई एम डांसिंग, तो मेरे बॉडी के हाथ पैर में तो बहुत ज्यादा काम चल रहा है, बट मेरी वचन वर्गणाएं नहीं चल रही है, तो वचन योग के कारण कर्म अभी इतने सारे नहीं आ रहे हैं, दैट वे, दैट वे। आप जो ज्यादा यूज करो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज सेड कि आप कम बोला करो, कम बोलोगे तो वचन योग के कारण कम आश्रव होगा, आप डिसिप्लिन तरीके से चला करो, यू शुड वॉक यू नो लाइक ऐसे प्रॉपरली चलना चाहिए, हाथ पैर ज्यादा नहीं चलाने चाहिए इधर उधर बैठ के, वाई? बिकॉज वो काय योग से आपका आश्रव कम होगा। और फिर देयर इज वेरी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो दिखता नहीं है योग, एंड विच इज लाइक द साइलेंट किलर एंड द मोस्ट पॉइजनस ऑफ ऑल, मन योग। मन योग में हमको कुछ मूवमेंट नहीं दिखता है, तो आप एकदम, आपने मौन ले लिया एक घंटे का, यू आर सिटिंग, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर सिटिंग इन पद्मासना, यू आर सेइंग नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर डूइंग सामायिक, लेट्स से यू आर नॉट स्पीकिंग, बट आप मन में सारी प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ये करूंगा इसके बाद, ये करूंगा, ये करूंगा, इसके कारण यू आर हैविंग वेरी इंटेंस कार्मिक इन्फ्लक्स, द कर्मास आर कमिंग, क्योंकि अब वो मन योग चल रहा है आपका, मन भी एक योग है, उसके कारण वहां के प्रदेशों में बहुत कंपल है, करेक्ट? तो ज्ञानत राय जी का देयर इज अ भजन, काहे को सोचत अति भारी रे मन, काहे को सोचत अति भारी, इट्स अ ब्यूटिफुल भजन, मतलब काहे को सोचत अति भारी रे मन, हे मन तुम इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? अगली लाइन उसकी, सब द्रव्यन की तीन काल की विधि न्यारी की न्यारी, केवल ज्ञान विषय प्रतिभासी सो हो है सारी, काहे को सोचत अति भारी। सारे द्रव्यों की तीन काल की जो जो भी पर्याय होनी है, जो जो भी उनकी विधि है, वो तो इंडिविजुअल सबकी इंडिपेंडेंट है, न्यारी न्यारी है, और जैसा केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देख लिया है वैसी वैसी होने वाली है, तो हेमन तुम क्यों सोच रहे हो फालतू में, वो तो ऑलरेडी होने ही है, जैसी जैसी होनी, तुम्हारे सोचने से क्या होगा? फिर अगली लाइन उसकी, सोच करन ते बंध बढ़त है उपजत है दुख क्वारी, चिंता चिता तमान बखानी बुद्धि करत है कारी, काहे को सोचत अति भारी। चिंता करने से मतलब सोचने से, सोचना फालतू का सोचना, कुछ नहीं है बैठे बैठे सोच रहे हैं बस, तो सोच करनते बंद बढ़ता है, तो सोच करने से आपका मन योग का कंपन बढ़ रहा है, मन योग का कंपन बढ़ रहा है तो आश्रव बढ़ रहा है, आश्रव बढ़ रहा है तो बंद बढ़ रहा है, क्योंकि ये सांप्रदायिक आश्रव है, ईर्ष्यापद आश्रव तो है नहीं आपको, तो इससे सोचने से बैठे बैठे, सो आई एम थिंकिंग यार मैं बड़ा हो जाऊंगा, देन आई हैव दिस बंगलो, लोग मुझसे पूछेंगे, एंड देन आई गो टू दैट प्लेस, और फिर वहां पर मेरा सम्मान होगा एंड आई विल बी यू नो द रिचेस्ट मैन। तो बैठा है यहाँ पर, कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ाई करनी है, छोटा सा बच्चा है 10th स्टैंडर्ड का, बट ही इज थिंकिंग सो मच ऑल द फैंटेसीज ही इज हैविंग। तो वो उसने यहाँ पर बैठे बैठे बिना कुछ किए इतना कर्म का बंधन कर लिया है निदान का, ही इज नो आइडिया। सोच करण से बंध बढ़त है और उससे क्या होता है, उपजत है दुख कुवारी, एक दुखों का गार्डन खिल जाता है पूरा का पूरा। और ऐसी चिंता, ऐसी सोच चिता के समान है, जलाने वाली है, ये बुद्धि को काला कर देती है, बुद्धि करत है काली। बहुत अच्छा वचन उसके, और भी स्टेंजा से आगे कि हम क्यों सोचते हैं फालतू, सोचने से तो कुछ होता है नहीं। माया भी थे,
चालू चालू बोलते हैं कि तुम सोचा करो सारा।
नहीं नहीं, सोचना लाइक
चालू इन द वर्ल्डली,
यस करेक्ट, यू शुड ऑलवेज ड्रीम, एवरीबॉडी इज सेइंग ड्रीम ड्रीम हाई, ड्रीम ऑलवेज, लिव इन ड्रीम, वॉच ड्रीम विद योर ओपन आईज
बोलता है।
तो जैन धर्म के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है ना, वो कहता है आप छह द्रव्यों का स्वरूप विचार करो, आप द्रव्य गुण का स्वरूप विचार करो, आप ये उपादेय के बारे में सोचो, अरिहंत का कैसा स्वरूप है, आचार्यों की कैसी दशा है, जिनवाणी में क्या क्या आया है, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप राम जी के अंदर की मनस्थिति सोचो, अंजना जी के अंदर की सोचो, द्रौपदी जी की सोचो, इतने सारे ज्ञानियों के जीवन है सोचने के लिए। आप जो चीज है नहीं और जो होने की जिसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ऐसी चीजों कल का भरोसा नहीं है, यू हैव प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट राइट। तो ऐसा सोचने से क्या फायदा, इंस्टेड सोचो जो ऑलरेडी सब्सटेंशिएटेड बाय सम फैक्ट। महावीर भगवान हुए, ही इज अरिहंत, ही इज एग्जिस्टिंग, ही इज नॉट अ फिक्शनल फिगर, थिंक अबाउट हिम। छह द्रव्य दे आर अपेरेंट, सामने है, उनके बारे में सोचो, यू आर देयर, आपका ज्ञान सामने है, अपने ज्ञान स्वभाव के बारे में सोचो। तो सोचना एज इन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, योर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम एंड उपयोग इन दैट, वो गड़बड़ है, वो गलत है, उसके कारण बंध बहुत तीव्र होता है। टोडरमल जी ने बोला है तत्व विचार से बंध शिथिल पड़ता है। आप ये वाली चीजों के बारे में विचार करेंगे तो ये सोचना नहीं कहलाता है, तत्व विचार कहलाता है, और इसके कारण कर्म बंधन शिथिल पड़ जाते हैं, बहुत यू नो ढीले हो जाते हैं, कषाय बहुत जल्दी टूट के गिरती हैं इतना सोचने पर। ये तत्व विचार का फल है, लेकिन विपरीत विचार का फल ये है कि उससे बंध जितना नॉर्मल हो रहा था उससे दुगना, मतलब इट जस्ट यू नो पिक्स अप द पेस, उसका पेस बढ़ जाता है बहुत बड़ा। दैट्स व्हाई वी शुड नेवर थिंक इम्पॉसिबल और जो कि रियल नहीं है। हाँ, दिस इज गुड दैट यू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट एंड ऑल यू आर डूइंग इट, बट जस्ट फैंटेसाइजिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ठीक है एक बार कर लिया ना आपने, रोज रोज क्या सोचना उसके बारे में। सो ये सोच वगैरह, चिंता वगैरह, इन सब से कुछ होता नहीं है करेक्ट। तो ये आश्रव जो होते हैं, अगला तत्व वो ही है, यो अजीव। अब आश्रव सुनिए, मन वच काय प्रयोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। ये तो अजीव हो गए, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ठीक है। इनकी व्यवस्था सुंदरतम है, सुंदरतम, इससे सुंदर एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तो इसकी जो टीका है तीसरी गाथा की समय साल की, उसमें बहुत सुंदर लिखा हमारे सिंहाचार्य देव ने, वी शुड रीड दैट टीका। वेट, आई रीड इट राइट नाउ ओनली। समय सार की जो तीसरी गाथा की टीका है, इट्स अमेजिंग, मैं आपको बताता हूँ दो सेकेंड पहले। देखिए मैं टीका पढ़ रहा हूँ गाथा नंबर 3 की, ओके। यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, मतलब छह द्रव्य, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय से अर्थात एक ही भाव से, मतलब अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है वह समय है। तो ऐसे छह द्रव्य करते हैं, इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। सो द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेस, देयर आर इनफाइनाइट सब्सटेंसेस एंड द ब्यूटी इज दैट दे ऑल आर मॉडिफाइंग इन देयर ओन नेचर, दे आर नॉट ट्रेसपासिंग इनटू अदर्स नेचर। वो नहीं जा रहे किसी अपने बैरिकेड को छोड़ के, अपनी लिमिटेशंस को छोड़ के, अपनी सीमाओं को छोड़ के, वे अपने स्वभाव से बाहर किसी दूसरे द्रव्य में नहीं जा रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटी। वो उनकी स्पेशलिटी क्या है, सुंदरता को वो क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होते हैं, यानी अपने गुण पर्याय रूप ही परिणमते हैं, दूसरे के गुण पर्याय रूप नहीं परिणमते। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे, मतलब जीव पुद्गल बन जाएगा, पुद्गल धर्म बन जाएगा, ऐसे पूरा लोक की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे गुरुदेवश्री की फेवरेट लाइन, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं। गुरुदेवश्री कई बार इसको उनके प्रवचनों में, दो तीन प्रवचनों में तो आ ही जाता है, चूमते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अपने गुण पर्यायों को चूमते हैं, दूसरे के गुण पर्यायों को छूते नहीं, अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता उनकी नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। What? Now I have this one question. आकाश द्रव्य का विशेष गुण क्या है? What is? अवगाहनत्व। तो अवगाहनत्व विशेष गुण है कि सामान्य गुण है?
विशेष।
Think about it. अवगाहनत्व सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? सामान्य गुण मतलब कॉमन एट्रीब्यूट्स, मतलब विच आर फाउंड इन ऑल द्रव्यास। विशेष गुण आर द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स विच आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक द्रव्यास। या तो अवगाहनत्व इज अ कॉमन एट्रीब्यूट और अ स्पेशल एट्रीब्यूट। अवगाहना मतलब स्पेस देना एक दूसरे को, तो हम सबको अवगाहना कौन देता है? आकाश द्रव्य देता है। तो अवगाहनत्व इज अ कॉमन और स्पेशल। हेलो,
इसको विशेष लेते हैं।
अच्छा, लेट्स इमेजिन, ठीक है, आप अभी आपके शरीर में जीव रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो आकाश में शरीर भी रह रहा है और आकाश में जीव भी रह रहा है, लेकिन जीव शरीर के साथ भी तो रह रहा है। तो लेट्स से आकाश ने जीव को जगह दी रहने की, लेकिन शरीर ने भी तो डिस्टर्ब नहीं किया ना, शरीर ने भी तो ये नहीं बोला ना कि नहीं अकेली मैं ही रहूंगा इस क्षेत्र में, यू कैन नॉट लिव। शरीर ऑल्सो एडजस्टेड फॉर यू। तो आकाश ने आपको अवगाहना दी, शरीर को अवगाहना दी, एंड शरीर ने आपको अवगाहना दी और आपने शरीर को अवगाहना दी, तभी आप दोनों एक क्षेत्र में रह पा रहे हो। आई हैव दिस बस, इन दिस बस देयर आर ओनली 60 सीट्स। 60 सीट्स में कितने लोग बैठ पाएंगे? 60 लोग बैठ पाएंगे। एक सीट में दो नहीं बैठ पाएंगे, दो बैठेंगे तो एक के ऊपर एक बैठेंगे, लेकिन सीट में नहीं बैठेंगे, सीट में तो एक ही बंदा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अवगाहना नहीं दे सकते। मैं अपनी सीट पर आपको नहीं बिठा सकता, क्योंकि आई कैन नॉट गिव यू अवगाहना इन दैट सीट, बिकॉज हमारी बॉडीज क्लैश होंगी, हम दोनों की बॉडीज एक क्षेत्र में नहीं आ सकती, क्योंकि हम टकराएंगे। करेक्ट? यस और नो? लेकिन जैसे हम और आप एक क्षेत्र में नहीं रह सकते, वैसे क्या आत्मा और शरीर नहीं रह सकते एक क्षेत्र में? वो तो रहते ही हैं। रहते हैं मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे को अवगाहना देते हैं, तब वो रह पाते हैं ना। एक दूसरे को रहने की, जैसे मैं आपको रहने की जगह दे रहा हूँ सीट पर, ऐसे शरीर ने आत्मा से नहीं बोला कि मत रहो, आत्मा ने शरीर से नहीं बोला, दोनों को आकाश ने एक ही क्षेत्र दिया, आकाश के प्रदेश अलग अलग नहीं है। अच्छा, जहां पर शरीर और आत्मा है वहां पर धर्म द्रव्य भी तो फैला हुआ है ना, हर जगह। तो धर्म द्रव्य आपको बोल रहा है कि नहीं यहाँ पर अकेली मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा?
नहीं,
तो धर्म द्रव्य भी आपको अवगाहना दे रहा है ना, अधर्म द्रव्य भी दे रहा है। एक भी द्रव्य डिस्टर्ब करेगा तो जस्ट सी द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स हैज दिस प्रॉब्लम, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। यहाँ पर वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स अलग चलती है, वी हैव लिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड द्रव्यात्, अनंत द्रव्य और असंख्यात क्षेत्र है, लाइक 343 क्यूबिक राजू, दैट्स अ टाइनी स्पेस, बहुत छोटी जगह है। और द्रव्य कितने के, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत धर्म धर्म आकाश एक, कालो प्रमाण असंख्यात। यदि सारे द्रव्य एक दूसरे को अवगाहना नहीं देंगे तो लोक की व्यवस्था कैसे बनेगी इकोनॉमिक्स में? असंख्यात क्षेत्र में अनंत प्रदेशी द्रव्य कैसे रहेंगे यदि वे द्रव्य एक दूसरे को रहने की जगह नहीं देते हैं? तो 60 लोगों की बस में 600 लोग कैसे बनेंगे? 45 लाख योजन की सिद्धशिला में अनंत अनंत सिद्ध कैसे बनेंगे यदि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को रहने की जगह नहीं देगा? तो आर यू गेटिंग इट? तो अवगाहनत्व सामान्य गुण है, लेकिन चूंकि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है और आकाश द्रव्य ने लोकाकाश को भी अवगाहना दे रखी है, तीन लोक को भी अवगाहना दे रखी है, तो उसको उसके आकार के कारण उसका विशेष गुण बताया जाता है। लेकिन अवगाहनत्व सारे गुण देते हैं, सारे द्रव्य देते हैं। ये एक द्रव्य भी अवगाहनत्व देना बंद करेगा, 6 द्रव्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये लोक तीन लोक बनेगा ही नहीं। समझ में आया नहीं आया? वस्तुवस्था इज अमेजिंग, वी हैव टू थिंक इट थ्रू, मतलब पूरा ये हम लोग जो पढ़ते हैं वो बालबोध में पढ़ा है हमने, दैट वॉज बेसिक टू नो, लेकिन ऐसा नहीं है अवगाहनत्व। ये वाली गाथाएं पंचास्तिकाएं में आई हैं, अवगाहनत्व ये सारे द्रव्यों में पाया जाता है, ये यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं। वे अपने गुण धर्मों के चक्र को चुंबन करते, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह रूप से तिष्ठ रहे, मतलब एक दूसरे को सारे समय अवगाहना दे रहे हैं, तथापि इतना होने पर भी, इतने पास पास रहने पर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। इससे क्या होता है, पररूप परिणमन नहीं करते, तो पररूप परिणमन ना करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, मतलब उनकी सेल्फ एग्जिस्टेंस नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। अब यहाँ की जो लाइन है, दैट इज माय फेवरेट, ये गजब की लाइन है, आप ये समझिएगा। और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। किसको लिया यहाँ पर? समय को, समय, समय यानी कि द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के परिणाम दो प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र देव ने बताए, विरुद्ध कार्य एंड अविरुद्ध कार्य। सी, पहले तो विरुद्ध और अविरुद्ध जैसे कोई भेद है नहीं, सबका परिणाम जैसा है वैसा है उनकी तत्समय की योग्यता के हिसाब से, लेकिन हमारी दृष्टि के हिसाब से हम विरुद्ध अविरुद्ध बोलते हैं। हमारे मोक्ष मार्ग में जो 7 सहयोगी कारण हो वो अविरुद्ध कार्य है, जो मोक्ष मार्ग को रोकता हो वो हमारे लिए विरुद्ध कार्य, लाइक से राइट अभी के लिए, ठीक है, या फिर जो लोक की व्यवस्था में हेल्प करता हो वो अविरुद्ध कार्य है, और जैसे टेररिज्म है वो विरुद्ध कार्य है, ठीक है। या अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि 6 द्रव्य अपने विरुद्ध कार्य से तथा अविरुद्ध कार्य से, इन दोनों की हेतुता से सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। आप ये बताइए, ये मैं शायद पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ,
विरुद्ध कार्य, तो जो हम निमित्त कारण होते हैं उसको विरुद्ध,
दोनों निमित्त, दोनों विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों निमित्त कारण में ही ले रहे हैं अपन, मतलब अभी हमें द्रव्य को इंडिविजुअली देखना है, ठीक है। एक एक समय है, ये समय दो टाइप के काम कर रहा है, विरुद्ध काम भी कर सकता है, अविरुद्ध काम भी कर सकता है। अभी हम बहुत मोटा एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी वेरी, मतलब बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक एग्जाम्पल, ठीक है। I'm not sure if I've asked this question to you, but I'll ask you this question. Shrenik Raja ne Yashodhar Muniraj ke upar mara hua sarp dala. Dala ki nahi dala?
Dala.
Was it a good karya or bad karya? Was it a nice thing to do or a bad thing to do?
Bad thing.
It was a bad thing to do. Usne vishv ki vyavastha ko sundar banaya ke badsurat banaya?
Badsurat.
Right? Amrit Chitra Charya Dev keh rahe hain कि समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं। तो राजा श्रेणिक ने राजा यशोधर के ऊपर सर्प डालकर विश्व का उपकार किया कि अपकार किया? उन्होंने इस व्यवस्था को बिगाड़ा कि सुधारा? Did he do a good job, good work or a bad work?
वैसे देखे तो वो तो हर एक द्रव्य का इंडिविजुअल परिणमन ही है, तो क्षणिक राजा कहाँ उसका वो साफ साफ के परमाणु उठा के करता?
नहीं नहीं, यू जस्ट टेल मी, ये वाला काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था उपसर्ग का? लाइक शुड इट बी अवॉइडेड और इट शुड हैव हैपेंड, मतलब होना चाहिए था? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यू नो पांचवे काल से छठवा काल बदलता है, तो हमारे आगम में वर्णन आता है कि पांचवे काल के अंत तक मुनिराज रहेंगे, एंड इन एवरी 500 ईयर देयर वुड बी कल्कि, एंड लाइक एवरी 1000 ईयर ऐसे कुछ कुछ है, उसमें कुछ कुछ राजा होंगे जो हमारा जैन धर्म का नाश करेंगे, बट इट विल स्टिल समहाउ सर्वाइव फॉर 18,000 ईयर्स कमिंग। ठीक है, इट्स अ ह्यूज टाइम, आई डोंट नो हाउ इट विल सर्वाइव, बट इट विल सर्वाइव बिकॉज आगम का वचन इज प्रमाणिक। नाउ व्हाट विल हैपन टू द लास्ट मॉन्क? The king then would be a Kalki, his name is Kalki, let's say. Okay? That king would happen and that king would say ki what is not being taxed, and everything would be taxed by then, and then people will say only the ahar of a Jain monk is not taxed. Matlab jo Jain Muniraj ahar lete hain, usme abhi tax nahi lag raha hai, baki everything we have taxes for. Right? So the Raja will order, okay, then the first कौर जो पहला वाला कौर रहेगा of उनका आहार मुनिराज का, वो सारा हमारा टैक्स है, that is the tax on मुनिराज से हम कैसा टैक्स वसूलेंगे, उनका जो भी पहला आहार का पहला कौर होगा that would be collected as a tax from the monk, okay? तो ऐसा होगा तो दिगंबर मुनिराज जो होंगे वो आहार छोड़ देंगे, they'll take समाधि, and that would be the start of sixth काल। ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग Kalki जो काम कर रहा है, वॉज ही डूइंग द इज ही डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग? इज ही गुड और इज ही बैड?
ऐसा ही परिणाम है तो फिर इसमें गुड और
बैड? ऐसा ही परिणाम तो है, बट इज इट हैपनिंग लाइक ये वस्तु व्यवस्था का सुंदर वस्तु व्यवस्था है कि बदसूरत है, तो गड़बड़ हो रही है ना, क्या बेकार काम हो रहा है?
एक्चुअली है तो वस्तु व्यवस्था के अनुसार ही है।
अमृत चंद्राचार्य देव तो वेरी कॉन्फिडेंट,
हम अच्छा बुरा बोलते हैं उसको।
अमृत चंद्राचार्य देव इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज सेइंग दैट वो Kalki राजा विरुद्ध कार्य करके सदा विश्व का उपकार कर रहा है। Now I am asking you, is that Kalki Raja doing Vishwa ka upkar or apkar? Is he benefiting this world or he is not benefiting this world?
Mruchendra Acharya bol rahe to benefit hoga.
Kaise? Kaise? How?
Nahi, wo likh ke gaye hai to hum mante hain.
Are nahi nahi, aise nahi. Nahi, just imagine if the Kalki doesn't do what he is doing. तो फिर छठवा काल कैसे आएगा? मुनिराज रहेंगे तो धर्म चलेगा ना, फिर छठवा काल नहीं आएगा तो फिर वापस काल परिवर्तन कैसे होगा, फिर पांचवा कैसे आएगा, फिर चौथा कैसे आएगा, फिर तीर्थंकर कैसे होंगे, फिर वापस धर्म कैसे आएगा? इफ ही स्टॉप डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, देयर इज होल यू नो एक पूरी सुंदरतम व्यवस्था है दैट हैज टू गो। यदि श्रेणिक राजा यशोधर मुनिराज पर सर्प नहीं डाल रहा है तो यशोधर मुनिराज ने जो पाप कर्म किए थे, पूर्व के अपराध, उनका न्याय कब होगा? उनकी सजा उनको कब मिलेगी? यदि श्रेणिक राजा यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग नहीं करेगा तो फिर वो चेलना को कैसे बताएगा? चेलना वापस कैसे आएगी? और श्रेणिक राजा फिर जैन धर्म कैसे अंगीकार करेंगे? वो छाइक समकिति बाद में कैसे होंगे? वॉट वी सी इज ओनली वन पॉइंट ऑफ दैट, बट इट्स अ होल मूवी, इट्स अ होल पिक्चर. देयर इज अ वेरी बिग पिक्चर जिसमें अनादि काल है और आगे का अनंत काल है. एंड एवरी सिंगल वन इवेंट इज वेरी वेरी लाइक, यदि इंद्रभूति गौतम को घमंड नहीं होगा तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा क्यों बोलेगा कि भैया मैं तुम्हारे गुरु से ही बात करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. और फिर यदि उसको अपनी इज्जत बचानी नहीं होगी तो वो समव शरण तक क्यों आएगा? और आया है तो अब वो बन जाएगा, गड़जर हो गया. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग विद अ डेफिनेट प्लान. इट्स नो लाइक यू नो सम कुछ ऐसे जिगजैग चल रहा है पूरी दुनिया में. एवरीथिंग इज फॉलोइंग अ प्लान. यदि आपके साथ बुरा हो रहा है सो इट्स नॉट बीइंग बुरा टू यू, इट्स बीइंग गुड टू यू. आपके पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है जो आपने गंदे काम किए थे. सो पाप कर्म इज ऑलवेज गुड, पापोदय इज ऑलवेज गुड, बिकॉज इट शोज दैट यू नो वट एवर यू डिड इट्स नाउ बीइंग रिडीम्ड, उसका रिडेम्पशन हो रहा है. इट्स गुड, यू शुड बी हैप्पी जब पाप का उदय आ रहा है, बिकॉज इट्स फॉलोइंग अ गुड प्लान. थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर गुड. पुण्य का उदय आ रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम. इसमें बहुत सचेत रहने वाली बात है, बिकॉज नाउ स्टॉक इज गेटिंग बर्न, आग लग गई आपके पुण्य के उदय में, तो वो सब उदय में आके जल रहा है. So now you should be more cautious. आपको धर्म में और ज्यादा लगना चाहिए, बिकॉज योर पुण्योदय का स्टॉक इज कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग. यू हैव टू मेंटेन दैट स्टॉक. पापोदय आ रहे, दैट्स गुड, उसमें आग लगी है, अब वो खत्म हो रहा है, दैट्स नाइस. सो आर यू सीइंग हाउ ब्यूटीफुल दिस होल मैकेनिक्स ऑफ द वर्ल्ड इज? इसलिए अमृतचंद्राचार्य देव ने बोला ये छह द्रव्य जो है, ये आपको लग सकता है इनका विरुद्ध परिणमन है कि अविरुद्ध परिणमन है, बट इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इवन इफ समबडी इज ड्रॉपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इट इज डूइंग विश्व का उपकार, बिकॉज इट इज गोइंग अंडर अ प्लान. यदि वो नहीं होगा तो ना कर्म व्यवस्था चल पाएगी, ना पाप पुण्य की व्यवस्था चल पाएगी, ना छह काल की व्यवस्था चल पाएगी, ना चार गति की व्यवस्था चल पाएगी, ना मोक्ष की व्यवस्था चल पाएगी. If whatever is happening stops happening, it would like you know, विश्व नहीं टिकेगा, विश्व का उपकार नहीं होगा.
वो बस सही है,
राइट? यदि मुनिराजों पर उपसर्ग नहीं होगा तो मुनिराज उन कर्मों की निर्जरा तो कर नहीं पा रहे, नहीं तो कर लेते अभी, तो उनके फिर वो वाले कर्म कब जाएंगे? वो कर्म नहीं जाएंगे तो भाई फिर आगे क्या होगा? अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, राइट? तो ये अपराध का बोध कब होगा? न्याय कैसे चलेगा? होगा ना, ऐसे तो होगा, करेक्ट? तो दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग. यहाँ छह द्रव्यों में सारे के सारे द्रव्य हैं, सबके सब समय हैं, सबके पास उनका खुद का इंडिपेंडेंट स्वभाव है, एंड दे आर मॉडिफाइंग ऑन देयर ओन स्वभाव. नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस दैट हैपेंस यू नो इन अ बैक सेशन, और दैट डजंट हैपन दैट हैपेंस विदाउट फॉलोइंग अ गुड प्लान. The world has a very nice plan के इसका ये plan है कि इसको अनंत काल तक चलना है, एंड इसको चलाने वाले इसकी जो employees हैं वो छह द्रव्य ही हैं, to run this big corporation of world. एंड वो छह द्रव्य विरुद्ध काम भी करेंगे, अविरुद्ध भी करेंगे, लेकिन वो दोनों काम इस वस्तु व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए हैं. तो विरुद्ध काम में भी संक्लेश परिणाम आप मत करना, आप इस वस्तु व्यवस्था की सुंदरता को देखना, आप अपने स्वरूप की सुंदरता को देखना, आप अपने समय को देखना कि इतने विरुद्ध कार्यों के बीच में भी आपका समय, आपका समय सार, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ये अपनी सुंदरता को नहीं छोड़ता, ये अपने एकत्व निश्चयगतपने को नहीं छोड़ता. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट? ये वाली चीज हमको देखने की है. ये आगे यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य देते हैं हमें तीसरी गाथा की टीका, आप लोग पढ़ना एक बार अच्छे से. पूरी वस्तु व्यवस्था का निचोड़े की एक दृष्टि दी अमृतचंद्राचार्य देव ने कि जो कुछ भी हो रहा है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें संक्लेश मत करो, लेकिन तुम अंदर देखो कि यहाँ कितना कुछ हो रहा है, इतना सुंदर तुम्हारा समय है, इससे सुंदर कोई वस्तु नहीं है, और तुम फिर भी विसंवाद की कथाओं को करते हो, विकथा को करते हो, हमें आश्चर्य है तुम्हें इतनी सुंदर चीज मिलने पर भी तुम उसके लिए अंधे बने हो, और तुम इतनी बुरी बुरी चीजों को देखने के लिए तुम्हारे पास समय है। दैट्स व्हाट वहां अमृतचंद्र आचार्य देव कहने वाले हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट टॉकिंग ऑन आश्रव तत्व, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आश्रव बंध, इसमें मिथ्या पांच प्रकार के आश्रमों के द्वार बताएंगे, हम उनकी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। So in the next class we'll do this. Anybody has any question in छह द्रव्य? छह द्रव्य तो हमारे एकदम बस जाने चाहिए, एकदम हमारे दिमाग में एकदम fix. You know, we should have lenses of छह द्रव्य instead of, you know, like यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें यही काम आएगा हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। छह द्रव्य का स्वरूप का विचार, सातत्व के स्वरूप का विचार, बारह भावनाओं का विचार, आत्मस्वरूप का विचार, ये हमारा बेसिक खाना है, ज्ञानियों मुमुक्षुओं का भोजन है। तो हमको ये छह द्रव्य को अच्छे से समझना है, इसमें कोई कंसेप्ट मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। एनी क्वेश्चन?
नहीं,
नो, ठीक है, चलो विल टू जिमानी। हाँ हाँ, मानस
जो है अनुभव जी, वो जो आपने जो
भजन बोला था,
बोले थे ना भजन, वो उसको
मैं अभी सचिन जी को मैं मेल कर देता हूँ, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ सचिन जी को, आई थिंक मेरे पास वो होगा
जी को।
ठीक है,
अच्छा, हाँ, थैंक,
ओके, ठीक है। मानस जी, मानस को
जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक, सौवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, नौ बार नमो कर मंत्र।